الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع افکار شہین مطہری کے ذیل میں معاشرہ اور اس کے وجود اور تشکیل کے عنوان سے ہے. گزشتہ درس میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ معاشرے کے بارے میں یہ اختلاف نظر پایا جاتا ہے کہ آیا معاشرہ واقعاً و حقیقتاً ایک وجود ہے یا حقیقتاً ایک وجود نہیں ہے. یہ موضوع اجتماعی مباحث میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے اثرات انسان کی عملی زندگی میں بہت نمایاں ہوتے ہیں، بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. یعنی حتیٰ کہ جن بزرگ ہمارے علمی شخصیات نے ان مباحث کو مطالعہ نہیں کیا، ان کے افکار اور نظریات بھی اس حوالے سے جم دکھائی نہیں دیں گے. یا اگر ہم اس کے حوالے سے کلی طور پہ جائزہ لیں تو جس نے ان افکار کو غور و فکر کیا اس کے عملی زندگی الگ نظر آتی ہے، اور جس نے ان مباحث کی پر توجہ نہیں دی اس کی عملی زندگی جدا نظر آتی ہے. اور یہ صرف معلومات کی بات نہیں ہے بلکہ انسان اپنے وجود میں اسے افکار، نظریات اور اعتقادات کی منزل کے اوپر لے کے جائے تب انسان کے لیے یہ نفع بخش ہے. جیسا کہ ہم بحث کی ابتدا میں چند دروس میں، کہ 6-7 دروس وہ بنتے ہیں، چند دروس میں ہم یہ مطالعہ کر چکے ہیں کہ ان مباحث کا تعلق انسان کے عقائد اور افکار کے ساتھ ہے. بعض جزوی اختلافات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نظریات جو ہیں وہ عملی زندگی میں شاید بہت بڑا اثر نہ کریں، لیکن عمومی طور پہ یہ مباحث، یہ بحثیں انسان کی عملی زندگی میں بہت بڑے پیمانے پہ اثر انداز ہوتی ہیں. حتیٰ کہ عقائد پڑھنے کے اعتبار سے توحید کو ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے انفرادی حیثیت سے، ایک دفعہ توحید کو اجتماعی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. اگر ہم توحید کو اجتماعی حیثیت سے مطالعہ نہ کریں تو امامت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امامت کا تو مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں عالمی حکومت توحید کی قائم کرنا جس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، اسے امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا امام وہ دین اور دنیا دونوں میں حاکم بنائے گئے ہیں، دونوں میں حاکم بنائے گئے ہیں تاکہ توحید کے پرچم کو پوری دنیا کے اوپر وہ غلبہ دیں. اب اگر ہم اس اجتماعی حیثیت کے قائل نہ ہوں تو امامت کا جو انفرادی پہلو ہے وہ یہی رہ جاتا ہے، توسل ہے، برکت ہے اور شفا ہے. اجتماعی پہلو ہمارے پاس وہ گم ہو کے رہ جائے گا. اسی طرح دیگر مباحث ہیں، مثلا اگر ایک معاشرہ ہے وہ قیامت کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتا، اس معاشرے کی جو فعالیت ہے اور حرکات ہیں وہ جدا ہیں، اور بقیہ ہمارے سامنے فعالیتیں جو اعتقاد رکھتے ہیں وہ جدا نوعیت کی سامنے آئیں گی. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ معاشرہ ایک وجود رکھتا ہے اور حیات رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے اور زندگی اور حیات رکھتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کے لیے بھی چند چیزیں ہمیں ثابت کرنا پڑ جائیں گی. مثلا کیا کیا چیزیں ثابت کریں گے؟ کہ اس کے لیے بھی قوانین ہیں، جیسے ہر زندہ شے کے لیے قوانین اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں. ہم اپنی انفرادی زندگی میں کتنے ہی قوانین دیکھتے ہیں جو ہمارے اوپر غالب ہیں اور ہم ان کے ماتحت زندگی بسر کر رہے ہیں، نکل نہیں سکتے اس سے. مثلا جو سخت شے ہے وہ نرم شے کو کاٹ دیتی ہے، ایک قانون ہے. اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم کتنا اپنی زندگی میں چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں، اس قانون کا غلبہ ہے یا نہیں؟ کوئی ہزار چاہے کہ نرم جسم پہ یہ تیز دھار آلہ چل جائے اور وہ کٹے نہ، تو وہ اس کی چاہت کے اوپر تو نہیں کٹے گا، وہ تو کٹ جائے گا کیونکہ قانون غالب ہے. اسی طرح اور دیگر چیزیں ہیں کہ انسان فیصلے کرتا ہے، اور فیصلے اگر اس نے غلط کیے ہیں غلط نتائج آئیں گے ہی آئیں گے، صحیح کیے ہیں تو صحیح نتائج آئیں گے کیونکہ وہ اس قانون کے تابع ہے. مثلا پانی بہتا ہے ایک طرف، پانی کی طبیعت کے اوپر ایک قانون غالب ہے طبیعت پانی پہ، یعنی حقیقت و ذات پانی کے اوپر قانون غالب ہے. وہ یہ ہے کہ جب اس کو نیچے کی طرف بہائے تو یہ بہہ جائے گا. ये अगर एक जगह ठहरे भी तो वो जम के नहीं ठहरेगा, सही है। तबीयत के ऊपर कुछ कवानीन गालिब हैं। हर हयात दुनिया में जो शय भी हयात रखती है अल्लाह ने उसकी तदबीर कवानीन के ज़रिए की है, यह हमें ज़हन-नशीन बात करनी चाहिए। हत्ता कि जो हम मौजज़ात पढ़ते हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के, ये मौजज़ात व करामात भी कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं, उस कानून तक अभी हमारी रसाई नहीं है, कई हज़ार साल बाद मुमकिन हो जाए और हमारे हाथों से भी एक अमल बरपा हो जाए, लेकिन उस वक्त का बशर वो आजिज़ है कि उसकी नज़ीर ला सके, उसको तोड़ सके। इसलिए वहाँ पे कानून से बाहर नहीं होगा, कानून की इतला हमें नहीं है, हम एक आदि कवानीन को जानते हैं, हम खसूसी कानून को मोजज़े की ज़ुबान में खसूसी कानून को नहीं जानते थे। आदि कवानीन को मोजज़ा हमेशा तोड़ता है, लेकिन क्या अल्लाह के गालिब कवानीन को भी तोड़ता है? जो अल्लाह ने हर शय के ऊपर गलबा दिए हैं जिन कवानीन को, वो कवानीन नहीं टूटते। मोजज़ात और करामात से इंसान जिन चीज़ कवानीन का आदि हो चुका है, देख देख के, मतलब इंसान देख देख के आदि हो चुका है कि मशरक़ से सूरज निकलता है, उसने अब अपने तौर पे एक कानून बना लिया। इंसान बाज़ कवानीन को देख देख के इस बात का कायल हो गया है कि बहता समंदर तो नहीं चीरा जा सकता, दरिया तो नहीं चीरा जा सकता, क्योंकि आधी ज़िंदगी में उसने कभी ये मंज़र नहीं देखा। तो इसे कहते हैं कवानीन आदि। मौजज़ा आदि कवानीन को तो तोड़ देता है, लेकिन अल्लाह के हर कानून को नहीं तोड़ता। लिहाजा इन तमाम कवानीन के ऊपर हाकिम कवानीन अल्लाह ने बनाए हैं, हमें उन कवानीन की इतला नहीं होती। अब अगर हम ये कहते हैं कि माशरा एक वजूद रखता है, एक खिलकत है, एक वजूद है, तो उस वजूद का जिस्म और रूह भी होगा। अब इधर हम इंशाल्लाह अभी आगे बहस चलाएंगे कि इस बात का ये मतलब हुआ कि तरकीब, वही तरकीब वाली बात आएगी, लेकिन अभी हम नताइज लें कि अगर माशरा वजूद रखता है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके लिए कवानीन है और उन कवानीन के ताबे एक माशरा ज़िंदगी बसर कर रहा है, और वो कवानीन लागू हो के ही रहेंगे इस माशरे के ऊपर, और वो सबको लपेट में लेके आएंगे। दुरुस्त है? बस एक कानून हमें कवानीन इलाहिया साबित होते हैं, और इधर से वो बहस चलती है सुनन इलाहिया की, सुनन तारीख़ की, जो आप पढ़ते हैं, और शहीद सदर रहमतुल्लाह अलैह के अफकार के ज़िल में हम मुफस्सलन सुनन तारीख़ को मुतालिया कर चुके हैं कि माशरे पे हाकिम कवानीन जो सआदत और निजात और सआदत या हलाकत से मुतालिक हैं। इसके बाद हमारे पास और भी मौजूआत आ जाते हैं इंशाल्लाह, भी आगे कुरान के ज़िल में हम लेंगे। मसलन कुरान ने हिसाब किताब, अगर एक ज़िंदा वजूद है, बाशऊर है, आकिल है, तो उसका हिसाब किताब है या नहीं? फिर बतौर मुआशरा, माशरे से एक हिसाब किताब है। इसी तरह माशरे को किताब देना, सबसे बढ़कर जो ज़िंदा शय है उसकी ज़िंदगी मुअय्यन है या नहीं, इसका मतलब हर माशरे की ज़िंदगी भी मुअय्यन है। अगर माशरा वजूद रखता है तो उसके लिए ज़िंदगी आपको करार देने पड़ेगी, और अगर माशरा ज़िंदगी रखता है तो उसके लिए मौत है या नहीं, मौत का हुक्म भी लगाना पड़ेगा। ये सारे के सारे अहकाम कब जारी हो रहे हैं? इस बात के कायल हो जाए माशरा वजूद रखता है। अगर हम इस बात के कायल हों कि ये माशरा वजूद नहीं रखता, ये सारे अहकाम जारी होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जब एक ज़ात वजूद ही नहीं रखती, एक ज़ात हयात ही नहीं रखती, तो उसके लिए मौत कहाँ से लाएंगे? एक ज़ात अमल अंजाम दे ही नहीं सकती, उसके लिए हिसाब किताब कहाँ से लाएंगे? एक ज़ात जब वजूद ही नहीं रखती, उसके कवानीन कहाँ से खल करेंगे? इसलिए ये दो अलग अलग नताइज हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए माशरे की बहस में ज़ैली तौर पे नज़रियात हमें मुख्तलिफ मिल जाते हैं, मबानी जामे शनासी या इस तरह से किताबें भी आज के दौर में बहुत सारी आ चुकी हैं, खुसूसन फ़ारसी में हर बड़ी इंग्लिश किताब तर्जमा हो चुकी है इस फ़न के ऊपर, उर्दू में बहुत कम है, लेकिन फ़ारसी में आपको तकरीबन हर बड़े अंग्रेज़ मुफक्किर की किताबें आपको मिल जाएंगी। आप किताबों में नज़रियात मुख्तलिफ देखते हैं, लेकिन सब नज़रियात हकीकत में इन दो नज़रियात में ज़म हो जाते हैं, यानी इन दो अनावीने जामे के तहत आ जाते हैं। एक है कि माशरा वजूद रखता है, दूसरा इसके मुकाबले में क्या है? माशरा वजूद नहीं रखता। दुरुस्त है? अब जब कहते हैं माशरा वजूद रखता है, इसके ज़हन में भी कई नज़रियात हैं, आया फ़र्द भी उधर वजूद रखता है या नहीं? बाज़ ऐसे हैं कि जो कहते हैं सिर्फ माशरा ही वजूद रखता है, फ़र्द की कोई कीमत नहीं है। बाज़ ये कहते हैं कि नहीं, माशरा और वजूद दोनों कीमत रखते हैं और दोनों वजूद रखते हैं। जैसे शेख मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा तबातबाई इसी नज़रिए के कायल हैं, फ़र्द और माशरे दोनों की हयात के कायल हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है, इंसान का एक जिस्म और एक रूह है जिसे हम इनफरादी तौर पर जानते हैं, और एक जिस्म आपस में ये सारे अफराद मिल के तरकीब पा के वजूद देते हैं, और एक उसमें रूह और नफ्स बरपा होती है। इस तरह से दो जिस्म और दो रूहें गोया के हो गई, गोया के दो जिस्म और दो रूहें। अब इसको भी हम देखेंगे, इसके मुकाबले में जो नज़रिया है कि माशरा ख़ुद वजूद नहीं रखता, एक एतबारी चीज़ है, उसे हम एतबार करते हैं, और एतबार करने की वजह से बाज़ नफ़ा और मुनाफ़े हम ले लेते हैं। हमारे इस्लामी मुफक्किरीन में तकसीम बंदी है। अभी हम शहीद मुतहरी के बयानात पढ़ रहे हैं, अल्लामा तबाई, क्योंकि शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह हकीकत में शारे हैं अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के। अल्लामा तबातबाई ने अलमीज़ान में इस पर तफसीली बहस की है और आयात से इस्तदलाल की है, वही आयात शहीद मुतहरी उसे मुफस्सलन शर्ह के साथ बयान किए हैं। इसलिए शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तकारीर गोया के अल्लामा तबातबाई ने जो लिखा है उसकी बेहतरीन शरह है, और अल्लामा को समझा ही तब जा सकता है कि शहीद मुतहरी ने जो शरह की है उसके आईने में। इसलिए कम ही जगह पे ना होने के बराबर कहीं इख्तलाफ आपस में कोई पाया जाता हो। लिहाजा अल्लामा तबातबाई इस बात के कायल हैं कि फ़र्द भी हकीकत रखता है और माशरा भी वजूद रखता है, दोनों के दोनों असालत रखते हैं। इनके मुकाबले में आते हैं जिसे कहते हैं फ़र्द गिराई, यानी फ़र्द असालत रखता है, माशरा कोई असालत नहीं रखता। आयतुल्लाह मिस्बाह यज़दी हाफिज़हुल्लाह ताला वो इसी नज़रिए की तरफ मायल हैं, वो माशरे की उन्होंने तनकीद की, क्योंकि बड़े एक वो बाहिम्मत मुफक्किर हैं, वो किसी के इल्मी रोब से फौरन मुतासिर नहीं हो जाते। अल्लामा तबातबाई ने कहा इज़्ज़त और तकरीम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इल्मी दुनिया इस्तदलाल से चलती है, वो तो किसी के इल्मी शख्सी रोब से तो नहीं चलती। लिहाजा इस तरफ अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो माशरे के वजूद के कायल हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी उन्होंने एतराज़ात किए। हाँ, मुमकिन है हम इंशाल्लाह ज़ैली तौर पे पढ़ेंगे आगा मिसबाह ने क्या कहा और वाकई उनकी तरफ ये बात मंसूब है या जैसा मकालात में दर्ज है या मंसूब नहीं है, और उन्होंने अगर वाकई वो इसके कायल हैं तो उनके दलीलें क्या हैं, क्योंकि ये भी कुरान से दलीलें लाते हैं, तो यकीनन इनकी कुरानी दलीलों को नक्स करना चाहिए। तो हम जायज़ा लेंगे कि जो उन्होंने तोड़ कहा निकाला है या इनकी दलीलों को उन्होंने एतराज़ात की सूरत में रद्द किया है, तो वो रद्द कैसा है, वाकई रद्द होता है या नहीं होता, इसको इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रहबर मौज़म का भी तमाम मौसुआ मौजूद है, उनकी भी हमें निगाह इस हवाले से ख़ुद मुतालिया करनी चाहिए कि माशरे के मौजू के ऊपर उनकी किताबें मौजूद हैं हमारे पास, तो ज़ैल में अब आप इस बहस को मुतालिया कर सकते हैं। अभी हम इसमें मज़ीद दिक्कत में नहीं जाते, क्योंकि आगे दोबारा चंद सफ़ों के बाद शहीद मुतहरी इसी मसले को दोबारा उठा रहे हैं। आया माशरा ख़ुद एक जीता जागता वजूद का नाम है या नहीं, फ़र्द है वो जीता जागता है, माशरा उन्हें देख के एक इंतज़ाई मफहूम हम हासिल करते हैं, एक एतबार हम करते हैं, वइला उसकी ख़ुद से कोई हकीकत नहीं है। शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस बात के कायल हैं माशरा ख़ुद एक वजूद रखता है, और जब एक वजूद रखता है तो उसकी ये ख़ुद रूह है, और वो रूह जो है उसके अफकार हैं, उस अफकार के नतीजे में आमाल हैं। अब अगर हम इस बात के कायल हों तो वो कैसी तरकीब अफराद में पाई जाएगी, इसलिए तरकीब के मौरिद में जब आएँ तो वहाँ पर हम देखते हैं तरकीब, एक दफ़ा तरकीब हकीकी हमने पढ़ी, लेकिन तरकीब हकीकी कैसे, तरकीब हकीकी एतबारी के अलावा एक है तरकीब, तरकीब सिनाई, जैसे आप गाड़ी को नहीं जोड़ देते, आप अब जब गाड़ी को पुर्जे जोड़ते हैं, टायर है, दरवाजे हैं, शीशा है, स्टेयरिंग है, तो हर पुर्जे का अपना अलग से एक वजूद कायम रहता है या नहीं रहता, लेकिन वो दूसरे पुर्जे के तआवुन के साथ एक शय को हमारे सामने वजूद दे रहा है या नहीं। तो ये जो गाड़ी के इनवान से वजूद हमारे सामने आ रहा है, आया ये हकीकत रखता है या वो पुर्जे इस्तकलाली तौर पे हकीकत रखते हैं, यानी पुर्जे हैं जिनको जुड़ के एक मुरक्कब चीज़ बनी है, और वो पुर्जे जुदा जुदा तौर पे अपने तौर पे एक हकीकत रखते हैं। अगर इस तरह की जो तरकीब होती है जिसमें हर जुज एक दूसरे से ज़म तो है, लेकिन ज़म होने के बावजूद अपना इस्तकलाल नहीं खोया, ज़म होने के बावजूद अपनी ज़ात को उसने खोया नहीं है, इसे कहते हैं सिनाई। ये सिनाई तरकीब हमारी बन जाएगी और इसमें जुदा उस तरकीब से हो जाएँ तो उस मुरक्कब को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक शीशा निकाल के आप साइड पर रख दें तो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, नहीं, क्योंकि उसका एक अलग वजूद था और वो ऐसा वजूद ज़म नहीं है कि मुरक्कब ही बिल्कुल ख़त्म। हाँ, सारे पुर्जे अलग अलग कर दें तो हो जाएगा, लेकिन इक्का दुक्का पुर्जे, ये इस्तकलाल की तरफ इशारा है। इसके बाद एक तरकीब इन्होंने बयान की है जिसे कहते हैं तरकीब इंज़मामी, कि हम इसे दोबारा इस तरफ आएंगे। तरकीब सिनाई जो हैं वो एक वाकई तरकीब है जिसमें एक जुज दूसरे जुज से पैवस्त है और पैवंद उसमें लगा हुआ है, लेकिन उसने अपना इस्तकलाल और अपनी ज़ात नहीं खोई। तरकीब इंज़मामी इसके मद मुकाबिल है, उसमें एक चीज़ दूसरी शय में हल हो जाती है। जैसे कि आप चीनी पानी में मिक्स करते हैं तो चीनी और पानी का जो महलूल है उसमें ये तरकीब आपस में क्या कहलाएगी, ये इंज़मामी कहलाएगी। मसलन अगर सफ़ेद रंग है और जिस्म है, जिस्म को कहते हैं हम जौहर, इस जिस्म के ऊपर जब सफ़ेद रंग आता है तो वो सफ़ेद रंग उस जिस्म के ऊपर हल हो जाता है या नहीं, और उस पर आके ठहर जाता है, और अगर उससे जुदा करें तो वो रंग भी ख़त्म हो जाएगा। जिस्म तो बाकी रहेगा लेकिन वो रंग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस नौ की तरकीब को क्या कहते हैं, इंज़मामी। एक तरकीब है तरकीब इत्तहादी। तरकीब इत्तहादी ये है कि दो अज़ा का आपस में ऐसे मिलना कि वो मिल के अपनी ज़ात को खो दें और नया वजूद सामने ले आए। वजूद तरकीब इत्तहादी क्या है, दो अज़ा का आपस में इस तरह से मिलना, मिल के अपनी ज़ात को खो दें और वो खो देने की वजह से ऐसा आपस में इत्तहाद कायम किया कि तीसरी शय वजूद में आ गई है। जैसे पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाप ऐसा हुआ है कि हमें पानी में दिखाई देती है हाइड्रोजन, क्योंकि उसकी ज़ाती अज़ा बाकी नहीं उस तरह से रहे, ना ऑक्सीजन दिखाई देती है। वो ऐसा ज़म हुए हैं या ऐसा इत्तहाद बरपा हुआ है कि उसने एक नई तीसरी शय को वजूद दे दिया है। लेकिन ये इंज़मामी में एक तीसरी शय नई वजूद नहीं आती, वो अपने तौर पे रहते हैं लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अज़ा हैं, एक दूसरे के साथ ज़म हैं लेकिन जुदा नहीं है, एक मुरक्कब सूरत बनती है उससे। लेकिन उसमें हम ये देखते हैं कि उनकी अपनी हैसियत भी बाकी है, जैसे दीवार के ऊपर रंग है, रंग की हैसियत बाकी है या नहीं, दीवार की हैसियत भी बाकी है, लेकिन पानी इस तरह की सूरत नहीं है। इंज़मामी में और इत्तहादी में आप थोड़ा सा फ़र्क करें। इंज़मामी में हल और महल है, यानी एक जगह पे एक शय का आ जाना और उसके ऊपर सराइयत कर जाना है, लेकिन इत्तहादी में फ़कत सराइयत नहीं है, आपस में ऐसा उनका मुत्तहिद होना है कि वो एक दूसरे की ज़ात ही उसमें खो दें और एक तीसरी शय को वो वजूद दे दें। यह हमारे पास तरकीबों की सूरत है। आया माशरा इनमें से कैसा है? माशरे के तो अज्जा यही अफराद हैं। आया अफराद का इन तरकीबों में से किसी नौ की तरकीब पाई जाती है या तरकीब नहीं पाई जाती, ये आइंदा के दुरूस में हम पढ़ेंगे। हम इधर आ जाते हैं क्योंकि ये तो सारी बहसें तब है ना कि जब माशरा वजूद में आ चुका है। हमने गुज़िश्ता दर्स में इस तरह से मौजू को मतरा किया था और छेड़ा था कि माशरे के वजूद के असबाब क्या हैं। यानी हम तरकीब अभी तक हम इधर रोक देते हैं क्योंकि इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है कि इसके ज़िम्न में हम ज़्यादा जाएं तो वो एक बहस पेचीदा तर पेचीदा होती चली जाएगी। कोशिश यह है कि ये वाली बहस हम कलील करें और वो वाली बहस कि जिसके नतायज हमें अमली ज़िंदगी में ज़्यादा दिखाई दें, ताकि हम तारीख में और तजिया तहलील की दुनिया में मौजूदा असर हाजिर के तजिया तहलील में दाखिल हो सकें, उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। लेकिन आपके सामने तरकीबों की सूरत मिल गई। तरकीब हकीकी होती है, एतबारी है, इंतमामी है, सिनाई है, इत्तहादी है। अब हम जायज़ा लेंगे, आप इंशाल्लाह इसको अपने डिस्कशन में जारी रखें। तरकीबों की नौयतों को जब जहन में बैठ जाए कि तरकीबें कितनी किस्म की हैं, उनकी मिसालें क्या बनती हैं, फिर माशरे पर दोबारा लौटेंगे और देखेंगे कि माशरे के अज़ा क्या हैं और उन अज़ा में आया कौन सा रब्त इनमें से बेहतर है। हमने कोई तकलीद नहीं किसी की करनी, अपने फ़हम से काम लेना है। तो किन अज्जा के साथ कैसा रब्त है उसके मुताबिक हम मुरक्कब बनाएंगे। अगर वो मुरक्कब बने और एतबारी बनता है तो फिर इस बात के कायल नहीं होंगे, हम कहेंगे नहीं बंदे का ही हिसाब किताब है, बंदे ही जिंदा और मुर्दा होते हैं, बंदे ही कानून के ताबे होते हैं, और इन बंदों के जमघट्टे से एक सूरत मजमू जहन जो है वो इंतज़ार करता है, बस वो एक एतबार करता है। लेकिन अगर हम इस बात के कायल हुए कि यह अज्जा एक दूसरे से पैवस्त हो जाते हैं, अफराद इस माशरे में, और वो माशरे में अफराद इस तरह से एक दूसरे के साथ पैवस्त और ज़म हैं कि वो एक नई वजूद को जन्म देते हैं और वो वजूद ज़िंदगी बसर करता है, वो वजूद नशोनुमा पाता है। इसलिए शहीद सदर रहम शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी नज़रिए की बुनियाद पर फ़लसफ़ा इंतज़ार भी पेश किया। फ़लसफ़ा इंतज़ार उनका यही है कि इंसानी माशरे पूरी दुनिया में, क्योंकि आलमी हुकूमत कायम होगी, उन्होंने जहानी तौर पर इसको मुलाहिज़ा किया कि जहानी तौर पर माशरे अभी बचपने के आलम में हैं, बचपने में हैं, रुश्त नहीं हो रहा उनमें, यानी रुश्त वो बुलूगत की हद तक नहीं पहुँचे, रुश्त कर रहे हैं, रुश्त नहीं हो रही है, माजरत के सही जुमला नहीं है, सही जुमला यह है कि रुश्त कर रहे हैं, बालिग नहीं हुए, यानी बालिग जब हो जाएंगे, बाबलुगत किसे कहते हैं, जब अक्ल आ जाए और वो अक्ल से हर चीज़ को देखने लग जाए। माशरे तरक्की कर रहे हैं सारी की सारी पूरी दुनिया में तदरीजन, जब वो बालिग हो जाएंगे तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे। तो हकीकत में इंतज़ार उनकी बलूगत का है, इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं है, इंतज़ार माशरों में इस रुश्त और तदरीजन आगे बढ़ने का है। और ये फ़लसफ़ा हमें कई आयात रवायात से मुताबिकत और पैवस्त नज़र आता है कि इंशाल्लाह इसको हम महदवियत के ज़ाल में देखेंगे। लेकिन आपने देखा शहीद का फ़लसफ़ा इंतज़ार किस बहस के ऊपर मुबतनी है, इसी माशरे की हकीकत के ऊपर। इसलिए वो माशरे की तरक्की के कायल हैं और माशरे के तकामुल के कायल हैं। हम यहाँ पे एक और सवाल उभारते हैं और उससे फिर आगे बहस को जारी करते हैं। वो बहस सवाल ये है, इंसान इस दुनिया में कमाल हासिल करना चाहता है या नहीं, नफ़ा नुकसान का हुसूल वो इस कदर शिद्दत से इंसान में नहीं पाया जाता जितनी शिद्दत से इंसान में कमाल के हुसूल का गरीज़ा पाया जाता है। हर इंसान अपने वजूद में इसे दर्क कर सकता है। इंसान कमाल जितनी शिद्दत के साथ हासिल करना चाहता है इसका मुकाबला किसी और गरीज़े से नहीं हो सकता, हत्ता कि वो अपनी शहवात को दाव पर लगा देता है। कितने ऐसे अफराद हैं जो बैरूनी तौर पे शहवतें, अगर उन्हें तन्हाइयों में मौके मिल जाएं तो मुमकिन है कि वो गुनाह करने में देर ना करें, लेकिन चूंकि सब देख रहे हैं और उसने जुर्म की तरफ कदम उठाया तो वो सबके सामने जलीलो ख़ार हो जाएगा, और जलीलो ख़ार होना नक्स है, कमाल नहीं है, वो कदम नहीं उठाता। इसलिए कमाल की तरफ हर कोई भागता है, इल्म कमाल है, मुमकिन है बाज़ लोग माल को कमाल दें फिर माल कमाल है, मुमकिन है सेहत को कमाल दें सेहत फिर कमाल है, कमाल की तरफ इंसान भागता है, लामहाला जाता है और बढ़ भी रहा है। इंसान की ज़िंदगी चार ना चार बढ़ रही है, चाहे ना चाहे जा रहा है, एक तरफ आगे बढ़ रहा है, सूरज निकलता है, ग़ुरूब होता है, मौसम बदलता है, ज़माना गुजरता है, इंसान के ऊपर असर इसका गुजर जाता है। हमारा जिस्म खुद ब खुद आप जितना खींच तान के बांध के रखें वो बढ़ जाएगा। इसलिए जिस्म इंसान का हो, रूह इंसान की हो, वो तकामुल की तरफ, वो बढ़ नशोनुमा की तरफ ही जा रही है। हाँ, ये नशोनुमा या इलाही अहदाफ पे है या गुमराही की तरफ है, लेकिन अल्लाह से कोई भी खाली नहीं है, अल्लाह ने हर शय का अहाता किया हुआ है। इस तरह से अहाता है कि शय उसके साथ ममाज़िज और मिली भी नहीं है और वो किसी शय से मिला हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि वो शय उससे खारिज हो और अल्लाह उस शय से खारिज हो, यानी ऐसा दाखिल है कि मिला हुआ ना हो, ऐसा खारिज है कि दाखिल ना हो, ये सिफात बारी ताला में से हैं। लिहाजा अगर एक शख्स गुमराह होता है वह अल्लाह के अहाते से बाहर नहीं आ सकता। या अय्युहल इंसानो इन्नका قادحٌ الى ربك قدحًا فملاقيه, ए इंसान तू अपने रब की तरफ चार ना चार हालत मजबूरी में जा ही रहा है, अब अल्लाह से जो मुलाकात करेगा सीधे पाँव सिरात मुस्तकीम पे मुलाकात करेगा, और बाज़ हैं कि जो उल्टे मुँह उनसे मुलाकात करेंगे, मुंह उनका नीचे, सर ऊपर है, और गुमराही के रास्तों के ऊपर वो जा रहे हैं। खुलासे कलाम, तकामुल यानी नज़रिए तकामुल अहम तरीन नज़रियात में से है। बाज़ ऐसे नज़रियात हैं जिसके ऊपर हमारी मालूमात वसी से वसी तर होनी चाहिए, और वसी से वसी तर उसके जवानिब खुल रहे हैं, और उनका इंसानी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और उनमें से अहम तरीन बहस यही नज़रिए तकामुल है, जिसे नज़रिए इर्तिका भी कहते हैं। डार्विन ने जिस तरह से ये अजसाम में नज़रिया इर्तिका पेश किया, कोई भी दुनिया में इर्तिका के नज़रिए का मुखालिफ नहीं है, लेकिन उस नज़रिए की तत्बीक और मसादीक और उसकी हदूद, इसके हवाले से बिला शक व शुबा सवालात हो सकते हैं। इंसानी वजूद में भी तकामुल और इर्तिका हो रहा है। अच्छा, इर्तिका बेदून हरकत हो सकता है? बेदून हरकत जन्म नहीं ले सकता, इसलिए दूसरी बहस अहम आ जाती है, हरकत। और हरकत ही एक ऐसी बहस है कि जो बाद के अय्याम में मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से आशकार हुई, और उन्होंने जौहर और आराज़ दोनों में हरकत के तसव्वुर को पेश किया। उनसे पहले हरकत सिर्फ आराज़ में शुमार होती थी। बहरहाल ये इस्तलाही दुनिया की बातें हैं। हम आएँ और इधर सवाल की तरफ आएँ। जब तकामुल हो रहा है, नशोनुमा इंसान पा रहा है, बढ़ रहा है, इर्तिका हो रहा है, ये सारा का सारा इर्तिका और कमाल तब कहलाएगा जब इनफरादी तौर पे इंसान कमालात को हासिल करे या इज्तमाई सूरत में। देखिए आपने कि हमारे मौजू से ये बहस कैसे जुड़ी, ये सारा इर्तिका, ये सारा का सारा तकामुल, ये आया इंसान के इनफरादी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, और इनफरादी तौर पे उसने नफ़ा उठा लिया, कमालात हासिल कर लिए, तो वह बाकमाल है, या नहीं, माशरा जब और एक इज्तिमा पूरा इज्तिमाई ज़िंदगी इंसान की वो तकामुल हासिल कर ले तो इसे कमाल कहा जाएगा। दोनों में से कमाल क्या है? इस सवाल का हमारे माशरे के वजूद से गहरा ताल्लुक है। अगर कोई माशरे के वजूद का कायल ही ना हो तो तकामुल की बहस होगी? नहीं होगी। अगर हम कहेंगे नहीं, माशरा एक वजूद रखता है, एक कुंबा वजूद रखता है, और उस कुंबे का इर्तिका है, वो तकामुल की तरफ जा रहा है, फिर ये बहस शामिल होगी। अच्छा, सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि माशरे को अगर आप चाहें कि उसके बिल्कुल आगाज़ के ऊपर, बिल्कुल आगाज़ के ऊपर अगर आप उसको देखना चाहें, तो वो पहला आगाज़ का हलका या दायरा क्या बनता है जिससे माशरे आगे बढ़ना शुरू होते हैं, जिससे माशरे तश्कील पाते हैं, जिसको वसी करें तो एक बड़ा माशरा सामने आ जाता है? वो आगाज़ है कुंबा, ख़ानदान। इसलिए जो ख़ानदान और कुंबे से निगाहें चुरा के और निगाहें हटा के कोई माशरे के काम करना चाहता है, वो दीनी काम नहीं कर सकता। अभी हमारे यहाँ इंसान सोचते हैं हम दीनी काम क्या करें, कौन सा दीनी काम करें, क्योंकि जो दीनी काम इज्तिमाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी रफ़्तार हमेशा आस्ता होती है, वो आप जितनी तेज़ भी कर दें तो वो फ़ौरन नहीं सामने आ सकती। तो जिनकी निगाहें इज्तिमाई ज़िंदगी के ऊपर नहीं होती या इज्तिमाई ज़िंदगानी से आशना नहीं होते, उनमें इस तरह के तहरुकात भी बरपा नहीं होते, वो अपनी एक मुख्तलिफ ज़िंदगी बसर करने की तरफ आते हैं। और अगर माशरा वजूद रखता है, अगर हम इस बात के कायल हो जाएं, तो एक बंदे का इनफरादी ज़िंदगी बसर करना और इनफरादी ज़िंदगी में चले जाना, ये उसका अपने आप और माशरे दोनों को नुकसान पहुंचाना है, यानी इंसानियत को हलाकत में डालने वाली बात होगी, यानी ख़ुद से किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। ये ज़हन नशीन रखें, कुरान ने, कुरान करीम में भी कोई छुरा खोपने वाले को फ़कत ज़ालिम नहीं कहा, कातिल को फ़कत ज़ालिम नहीं कहा, उन अफराद को भी कुरान करीम ने सख्ती के साथ मुजरिम करार दिया है कि जिन्होंने ज़ालिमीन की मदद की, या जो ज़ालिमीन के सामने बिल्कुल खामोश रहे, बाल्फाज़ दीगर, जिन्होंने माशरे की तबाही में हिस्सा लिया, बेशक चुप हो के लिया हो, ये इनफरादी तौर पे जो साइड पे निकल गया, इसने हक़ को कमज़ोर किया, इसने माशरे को ख़ुद फसाद और हलाकत में डाला। इससे हमें कुरान करीम के बहुत सारे बयानात की तफसीर भी आस्ता आस्ता समझने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा आपने इस जगह पर मुलाहिजा किया कि ये सवाल अहमियत का हामिल है कि इंसान अगर इज्तमाई इन मबाहिस को जो नहीं पढ़ता और नहीं सोचता, वो इनफरादी कमाल का सोचेगा, बस मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या लिया, मुझे क्या मिला, मेरे बीवी बच्चे, मेरा माल और मेरी सेहत, बस वो यही सोचेगा, उसे दूसरों से कोई गरज नहीं, माशरे से कोई गरज नहीं है। لیکن جو قرآن کریم کی اجتماعی زندگی اور اجتماعی فلسفوں سے آگاہ ہوتا ہے اس کی یہ نوعیت نہیں ہوتی، اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، وہ میں میں نہیں آتا پھر، میں تو ایک بہت چھوٹا سا کنواں ہے، ایک بند کمرہ ہے، اور اسی بند کمرے میں اسے پھر موت آ جاتی ہے۔ اس لیے جو میں کے نظریے کے زیادہ قائل ہوتے ہیں وہی نا امید ہوتے ہیں، وہی مایوس ہوتے ہیں، خودکشی کی طرف وہی جاتے ہیں، وہی ناکارہ رہ جاتے ہیں، کوئی کام ان سے نہیں لیا جا سکتا، ناکارہ طرف وہ آ جاتے ہیں۔ آئیں اب ہم یہ دیکھیں، ادھر اب دوسرا سوال ابھارتے ہیں، کیونکہ یہ سارے سوالوں کے جوابات اس وقت ہمیں میسر آئیں گے کہ ہم جز جز کے طور پہ چند معلومات پڑھیں گے اور پھر ان معلومات کا گہرا ایک دوسرے سے ربط دیں گے۔ لہذا ہم ایک ترکیب کی نوعیت پڑھ چکے، دوسرا ہم تکامل کے نظریے کو پڑھ چکے اس کے اوپر، اور تکامل کا حرکت سے تعلق ہے۔ لہذا بھی میں ایک اور چھوٹی سی مثال عملی پیمانے پہ آج کے دور کے حوالے سے دوں۔ آج کے دور میں تشیع کی ایک اجتماعی تحرک برپا ہے، یعنی اس وقت دنیا میں دفاعی حوالے سے اور علمی حوالے سے، ان دو حوالوں سے حتماً و حتماً برپا ہے۔ تبلیغی حوالے سے ایک حد تک ہے، بعض ایام میں ہے۔ یہ جو دفاعی تحرک تشیع کے اندر ہے، یہ رشد کر رہا ہے، نشوونما پا رہا ہے، یا زوال کا شکار ہو رہا ہے؟ آپ اس میں دیکھیں کہ رشد ہمیں کرتا دکھائی دے۔ اگر یہ کب تک رشد کرے گا؟ جب تک رشد کرنے کے تحرکات، حرکت رشد اسے ملے گی، ارتقاء اور تکامل میں جانے کے لیے وہ حرکت اسے وجود میں آئے گی۔ اگر پیچھے سے حرکت بند ہو جائے پھر رشد ہوگا، وہاں پہ وہ ختم ہو جائے، موت آ جائے گی اسے۔ لہذا حرکت اس کو زندگی دے گی۔ اب ایک فرد اس اجتماعی پہلو سے اپنے آپ کو کاملاً کاٹ کے رکھے، اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، لیکن اس کا دخل نہ دینا وہ اس کے ضرر کا بھی سبب ہے، اس کا اس کے اندر حرکت کا ایجاد نہ کرنا وہ اس کے نقصان کا بھی سبب ہے۔ حتیٰ کہ برائیاں بھی اسی طریقے سے ہیں، صرف اچھائیاں نہیں۔ ایک برائی جو غلبہ پاتی ہے وہ رشد کرتی ہے۔ وہ ایک ملک میں تھی پھر دوسرے ملک میں، مثلا فحاشی ممکن ہے کہ ایک ملک میں ہو، اس نے رشد کیا، رشد کب کرے گا؟ جب تحرکات اسے ملیں گے۔ ابھی بھی ایک برادر نے سوال کیا، کل کی ہی بات ہے، کہ وہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر پروجیکٹ لے کے ان کی پبلسٹی کا کام کرتا ہے۔ اب اسے غربی ممالک میں جم کا کام اسے ملا، جم ادھر مرد اور زن دونوں کے ہوتے ہیں، جو زن ہے ادھر خاتون ہے، خاتون کا جو جم ہے وہ یقیناً ان کے برہنہ لباس ہوتے ہیں، نیموریاں لباس پہن کے ہی وہ جم میں ایکسرسائز کرتی ہیں خواتین، کیونکہ وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اب یہ ہیں شیعہ مومن، وہ حلال حرام سے تھوڑا حساس ہے، تو اس لیے سوال کیا، ورنہ اس نے سوال بھی نہیں کرنا تھا۔ تو اس نے کہا میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ایک پروجیکٹ کو لے کے حلال طریقے سے مال کماؤں، میری یہ نیت نہیں ہے کہ کوئی میں فحاشی کی یا عریانیت کی میں ترویج کر رہا ہوں، میری نیت فقط اور فقط یہ ہے کہ میں اس کی سوشل میڈیا پہ پبلسٹی کروں، جو اس سے کانٹریکٹ ہوا ہے اس کانٹریکٹ کے مطابق اتنے اس کے مثلاً ویورز کر دوں یا اتنے اس کے ممبرز کر دوں، اور اس کے بعد میں اپنی تنخواہ لوں۔ تو اسے میں نے کہا کہ یہ عمل حرام عمل ہے، کیونکہ تم حرام عمل کے ذریعے سے کمائی کر رہے ہو۔ کیونکہ میری نیت تو حرام نہیں ہے، میں نے کہا وہ شے تو حرام ہے، لیکن اس میں بھی اگر ہم اس باب سے، یہ تو فقہی باب سے جائزہ تھا، کیونکہ فقہ میں انشاءاللہ اب ہمارے ہاں فقہ اجتماعی پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے ہاں جو کام ہوا تھا وہ فقہ انفرادی پہ کام تھا، یعنی روایت اور آیت موجود ہے، لیکن اس آیت سے جو استنباط کیا گیا تھا وہ انفرادی استنباط تھا۔ جیسے ابھی ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں مناسبت کے اعتبار سے امام سجادہ علیہ السلام کے، ایک ہی واقعہ ہے، لیکن ادھر جب انہوں نے کہا کہ میں اتخوف فتنہ تھا ابن زبیر، ادھر سے ہم سیاسی ایک استنباط لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، لیکن بقیہ نے صرف کرامات کا استنباط لیا۔ روایات اسی طرح ہمارے پاس ہیں، ان سے اجتماعی عناصر کا استنباط ہوتا ہے، اور فقہ اجتماعی کے اوپر الحمدللہ ہمارے مراجع اعظام کام بھی کر رہے ہیں، مجتہدین اور دروس بھی ہوتے ہیں، خصوصاً آیت اللہ سیستانی کے بالخصوص، کہ نجف کی سرزمین پہ انہوں نے جو اجتماعی حوالوں سے فتاوی دیے ہیں وہ تاریخ میں شاذ و نادر ہیں۔ ابھی تک کوئی فقیہ نہیں ایسا گزرا کہ جس نے اس طرح سے ایک ایسے ماحول میں جہاں حکومت ہاتھ میں نہ ہو اور وہاں پہ اس ملک کی اور اس قوم کی صلاح اور منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے فتاوی دیے ہوں، انہوں نے اجتماعی نوعیت کے فتاوی دیے ہیں، بالخصوص حشد الشعبی، اس کا وجود، और दाइश के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा, और जो इराक़ के जितने मनाबे, तेल के मनाबे हैं, ज़रात है या दीगर चीज़ें हैं, वो अहले इराक़ के लिए उसका इस्तेमाल जायज़ करार देना और उनकी उसकी पर हक़ को पहले फोकियत का करार देना, ये सारे इज्तमाही फतावे हैं। हत्ता कि अभी कोरोना के हवाले से भी उनके फतावा आए हैं और उन्होंने बताया कि उसमें क्या मराहिल हैं। पहले उसे आप तबी तौर पर गुस्ल दें, अगर नहीं मुमकिन तो तयम्मुम करें, अगर तब भी नहीं मुमकिन तो फिर जो इस्तरारी हालत में करीब तर शर के हो सकते हैं उसे अंजाम दिया जाएगा। लिहाजा इज्तमाही तौर पर वो काबिल अमल है हमारे लिए चीज़ें। लिहाजा आज के दौर में इज्तमाही दुनिया से कट के ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती। अब आप देखें इस मैदान में बकिया हमें ज़्यादा फतावे दिखाई देते हैं या कम फतावा दिखाई देते हैं। कम दिखाई देने की असल वजह यही है कि हमारे यहाँ इनफरादियत का एक रुख इख्तियार कर गया। चंद सदियाँ जो सख्ती की गुजरी, उन सख्ती की वजह से इनफरादी पहलू हमारे यहाँ सराहियत कर गए। लेकिन इनकलाब इस्लामी की बरकत में से ये एक बरकत है कि इज्तमाही उमूर जो हैं और उनके मबाहिस हमारे यहाँ दोबारा से दाखिल हो गए, और इन मबाहिस का नतीजा ये देखें, ये हैं 79 या 80 क्या 90-80 के दौर के तकारीर हैं शहीद मुतहरी, यानी आज से 40 साल पहले की बातें। 40 साल के बाद तो बहुत रुष्ट होना चाहिए उसूलन, लेकिन इस मौजूआत के ऊपर ना सोचने की वजह से और इन मौजूआत का अहतमाम ना करने की वजह से ज़्यादा उसके अंदर रुष्ट आपको दिखाई नहीं देता। यानी बाल्फाज़ दीगर तरकीब की कई किस्में सामने आ जानी चाहिए थी, उनके अज़ाओं के ऊपर मुबाहिस हमें कई किताबों में मिल जाने चाहिए थे, उसके अंदर की माशरा वजूद रखता है या फ़र्द गिराई है इसके ऊपर हमें कई किताबें सामने आनी चाहिए थी, उसके अंदर इस्तदलाली गुफ्तगू सामने आती, लेकिन आप देखते हैं कि इक्का दुक्का के अलावा हमें ये मौजूआत दिखाई नहीं देते। इसलिए हमें ख़ुद इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए और इनका मौजूआत का एहतमाम करना चाहिए। ये तशय्यु से वाबस्तगी इंसान के अंदर पैदा करता है। अगर वाकई तशय्यु मुस्तकबिल में निजात दहिंदा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का हकीकी मुंतज़िर एक मकतब है, तो इस मकतब की हकीकी शक्ल इज्तमाही शक्ल है, इनफरादी शक्ल इसकी हकीकी शक्ल नहीं है। यहाँ पे हम एक सवाल को दोबारा उभार के इख्तिताम की तरफ आते हैं, और वो ये सवाल है, माशरा वजूद में कैसे आता है? इसके बाद हम माशरे की तारीफ़ करेंगे और माशरे की तारीफ़ करके फिर इन तमाम मबाहिस को जोड़ेंगे, क्योंकि हमने अलहदा अलहदा तौर पर दो तीन बहसें अभी छेड़ दी। एक तरकीब के हवाले से बहस थी, एक मदनीयतब होने के हवाले से कि इसका ताल्लुक़ उसी से है, और ये बहस अब कि माशरे के वजूद के असबाब या माशरे की तश्कील के असबाब क्या हैं, माशरा क्यों वजूद में आता है। ये सवाल मुहिम और अहम सवाल है। दुनिया में आप कितने माशरे देखते हैं, कितनी रियासतें हैं, उन रियासतों के अंदर कितने इलाके हैं, सूबे हैं, सूबों के अंदर शहर हैं, शहर के अंदर बस्तियां हैं, बस्तियों के अंदर ख़ानदान हैं, और ये सब एक दूसरे से पैवस्त हैं या नहीं हैं? सब एक दूसरे के साथ पैवस्त हैं, और इस तरह से ये आपस में पैवस्त होकर एक माशरे को तश्कील देते हैं। सवाल यहाँ पे, ये सवाल जहनों में उभरना चाहिए। मैं तकरारन इसलिए सवाल उभार रहा हूँ ताकि ये कायम दायम रहे और अंदर एक अंगीज़ा पैदा हो कि इसका जवाब क्या है, यानी माशरे कैसे वजूद में है। मसलन यही अमरीका नाम का जो मुल्क है, इस जगह पर तो रेड इंडियन रहते थे, चंद कबाइल इधर रहते थे, इतनी बड़ी ये स्टेट कैसे बन गई? यूनाइटेड स्टेट कहते हैं ना, कई छोटे छोटे रियासतों के मजमू है जिन्होंने अपने ऊपर एक हुकूमत का क़याम काबिल अमल करार दिया है, यानी चंद स्टेट्स हैं उन स्टेट के ऊपर एक हुकूमत। यूरोपीय यूनियन भी इससे मुशाबे बनी हुई थी, अभी टूटती जा रही है बहरानों की वजह से, कि उन्होंने एक खत्ते में रहने वाले ममालिक को आपस में जोड़ा और उन ममालिक की हुकूमतें इनफरादी तौर पर भी रखी, लेकिन इन इनफरादी हुकूमतों के ऊपर एक हुकूमत ला के रख दी, और उसके फिर अपने कवानीन हैं, उसका फिर अपना एक, उन्होंने पूरी करेंसी चलाई यूरो के नाम से, यूरो के नाम से उन्होंने एक इज्तमाही करेंसी चलाई, इज्तमाही उन्होंने कवानीन वजूद दिए। वो कारोबारी दुनिया में सारे ममालिक एक फ़ैसला करते हैं, कोई अलग फ़ैसला नहीं होगा। मतलब वो कहेंगे ईरान से बायकॉट करना है, सब करेंगे बायकॉट। वो कहेंगे फ़लाँ हमने इत्तेहादी मुल्क का साथ देना है, वो सब के सब ममालिक साथ देंगे, एक करेंसी सब में चलेगी। बॉर्डर पार करना बेदून वीज़ा कोई मुश्किल नहीं है, पासपोर्ट वीज़ा के बगैर बॉर्डर पास करेंगे। हमने कहा कि यूरोपीय यूनियन एक बड़ा खित्ता है, उस खित्ते में अभी इंग्लैंड इससे बाहर निकल गया है, इंग्लैंड शामिल था, अभी बाहर इससे हो गया है, यही सियासी बहरान अभी उधर आते चले जा रहे हैं। तो इनके आपस में एक इन्होंने कैसे ये रियासत बनी, ये माशरे कैसे वजूद में आए, इनके ऊपर किस तरह से ये हुकूमतें दर हुकूमतें आ रही हैं। जैसे इधर माशरे की इंशाल्लाह ताला भी हम तफसीलात पढ़ेंगे कि जब उसकी हम तारीफ़ पढ़ेंगे तो वैसे जन्म कैसे लेता है उसको बिल्कुल हम जैसा लेबॉर्ट्री में आखिरी एक ज़र्रे को देखा जाता है, इस तरह से हम आखिरी ज़र्रे को देखेंगे, उस ज़र्रे से अलग ज़र्रात कैसे तश्कील पाते हुए एक जिस्म जन्म दे देते हैं, इस तरह से हम देखेंगे। और शहीद मुतारी रहमतुल्लाह जब वो वजूद मुआशरा के कायल हैं, उन्होंने इन सब मराहिल को बयान किया है। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, माशरा वजूद में कैसे आता है? इसके बारे में सिर्फ दो ही नज़रियात हो सकते हैं। एक नज़रिया ये है कि इंसान के अंदरूनी अंदरूनी गरीज़े ये सबब बनते हैं कि माशरा वजूद में आए, यानी माशरे के वजूद के असबाब कहाँ पे पिनहा हैं, खुद इंसानी नफ्स के अंदर, बातिन के अंदर। कोई हमसे पूछे कि माशरा क्यों वजूद में आता है, कहेंगे कि इंसान के बातिन में उसका सबब है। उसका सबब कहाँ पर है? इंसान के बातिन में है। दूसरा नज़रिया यह है कि नहीं, इंसान के बातिन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इंसान के बातिन से बाहर असबाब हैं, वो असबाब माशरे को वजूद देते हैं। दूसरा नज़रिया क्या है? इंसान के बातिन से बाहर असबाब हैं, वो असबाब क्या हैं? वो एक माशरे को जन्म देते हैं और एक माशरे को वजूद देते हैं। इधर से तीसरा नज़रिया भी बनता है कि अंदरूनी बैरूनी दोनों असबाब बनते हैं, अंदरूनी और बैरूनी, बाज़ मुहक्किकीन इसके भी कायल हैं, लेकिन वो तीसरा नज़रिया चूँकि वो मुरक्कब है इसलिए मैंने कहा कि असासी यही दो हैं। अलबत्ता तीसरा नज़रिया मुहिम नज़रिया है, अहम नज़रिया है कि अंदरूनी असबाब भी हैं और बैरूनी असबाब भी हैं। अब आपने ये जो तीन नाम और तीन सूरतें याद की थी वो इसी में ढल जाती हैं। जब हम कहते हैं मदनीयुत्तबा तो इसका क्या मतलब है? अंदरूनी सबब है, तब के अंदर अल्लाह ने सृष्टि में इंसान के रख दिया कि ये माशरे को जन्म दे, सृष्टि में रख दिया कि ये इज्तमाही ज़िंदगी बसर करे, दुरुस्त। लेकिन अगर हम बैरूनी को कहें, वही वही इस्तरार वाली बात है कि बैरूनी ऐसे असबाब हैं जो इंसान को मजबूर करते हैं कि तुम इज्तमाही ज़िंदगी को जन्म दो। लिहाजा ये दो हमारे पास बुनियादी नज़रियात आते हैं, इसके ऊपर कुरान करीम की अदिल्ला भी इसी तरह है। हमारे यहाँ जो इस्लामी हुकमा कायल रहे हैं, जैसे इब्ने सीना हैं, फ़ाराबी हैं और इसी तरह से दीगर बुज़ुर्ग हुकमा हैं, और दौरे हाज़िर में बड़ी शख्सियात जैसे आयतुल्ला तबातबाई हैं, शहीद सदर हैं, शहीद मुताहरी हैं, ये सब के सब इस बात के कायल हैं। हत्ता कि अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह, उन्होंने जो कलामी किताबें लिखी हैं और उसमें इमामत की जो दलील बयान की है उसमें भी इस मकूले को लें कि इंसान मदनीयुन बितब, इंसान तब में इज्तमाही, मदनी कहते हैं इज्तमाही ज़िंदगी, ये मतलब आप खसूसियत से लिख लें, मदनी उनका मतलब क्या है? इज्तमाही ज़िंदगी। तब का मतलब कि तबीयत के हमरा, तबीयत की वजह से, यहाँ बा क्यों आ रही है? बा वसीले के माना में है, जरिए के माना में है, तबीयत की वजह से, सबबियत इसे कहते हैं, बाय सबबियत, सबब बयान किया जा रहा है, इल्लत बयान की जा रही है, तबीयत की वजह से मदनी है, इज्तमाही ज़िंदगी बसर करता है। अगर ये तबीयत में ना होता, इज्तमाही ज़िंदगी ना होती। शहीद मुताहरी भी शिद्दत से इसके कायल हैं। आया कुरान से कोई इसके दलाइल मिलते हैं या नहीं, कुरान के बारे में इंशाल्लाह आगे तफसीली बहस आएगी, लेकिन इस मरहले में सिर्फ सोचों को मुनज़्ज़म करने के लिए मैं चंद कुरानी आपके सामने आयात का इशारा कर देता हूँ ताकि आपके लिए सोचने का मौका वसी पैमाने पर खुल जाए। तब को हम इन आयात को पढ़ेंगे तो तब इंसानी पता लग जाएगी। बस मदनी यून बितब में मदनी उनका मतलब क्या है? इज्तमाही ज़िंदगी। बा यहाँ किस माना में है? सबबियत के माना में है। तब का क्या मतलब है? इंसानी सरिश्त, इंसानी नफ्स के अंदर ये अल्लाह ने खिलकत में रख दिया है और वो मजबूर है, क्योंकि जो खिलकत में रख दिया उसमें इख्तियारी नहीं है, मजबूरन इंसान इज्तमाही ज़िंदगी को जन्म देगा। तब का मतलब क्या निकलेगा? मजबूर है कि इज्तमाही ज़िंदगी को जन्म दे, वाइल्ला जिंदा नहीं रह सकेगा, मर जाएगा। जब मजबूर है तो इसलिए माशरे दर माशरे वजूद में आते हैं। जो इन फलसफ़ों को बिल्कुल असलन समझता ही नहीं है, उसने आज तक ये वाले नाम भी नहीं सुने जो आज हम बातें कर रहे हैं, वो माशरों को वजूद दे देते हैं या नहीं? दे देते हैं। क्यों दे देते हैं फिर? जब उन्हें मालूमात ही नहीं है, क्योंकि गरीज़े में अल्लाह ने वजूद में रख दिया है इंसान के, वो मजबूर है कि इज्तमाही ज़िंदगी को गुजारना है। कुरान करीम की बाज़ आयात इसको बहुत वाज़े तौर पर बयान करती हैं, उसमें से मैं आपके सामने चंद आयात बयान कर देता हूँ। मसलन एक आयत हमारे पास है सूरह रूम आयत नंबर 21, वमिन आयात ही, कि अल्लाह की आयात में से किया है, अन खलक लकुम अज़वाजा, अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि मुमकिन आयत के बाज़ कलिमात में आगे पीछे हो जाएं, लेकिन जितना जहन में उतना मैं आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ, बकिया देख के इस्लाह कर लें। वमिन आयात ही, अल्लाह की आयात में से है, अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से हैं, अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि उसने तुम्हारे नफूस में से ही जोड़े खल्क किए हैं। ये जोड़े कहाँ से आए हैं? इंसानी नफूस से, सही है। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और दो चीज़ें तुम दोनों के माबैन रखें, लितस्कुनु इलैहा, इससे पहले क्या है, लितस्कुनु अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम लोग इन जोड़ों से क्या करो, सुकून हासिल करो। जब यह हा ज़मीर पीछे लौट रही है तो एक फ़र्द की तरफ नहीं लौट रही, लौट रही है मर्द और जन दोनों की तरफ। मर्द जन का मोहताज है और जन खातून जो है मर्द की मोहताज है। लितस्कुनु इलैहा, दोनों का सुकून इसी में है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम लोगों के दरमियान क्या रखा है, मवद्दत और रहमत अल्लाह ने करार दी। यहाँ पे सवाल, इंसान के वजूद में जो जिन्सी गरीज़ा है, ये पहला आमिल, इस आमिल पे बहुत गौर करें, जिन्सी गरीज़ा, वो हम खाली सोचें कि यार उभरना नहीं है तो वो चुप होकर बैठ जाएगा या तंग करता रहेगा इंसान को? अगर तंग ना करता होता तो बहुत सारे मसाइल ही दुनिया में ख़त्म होते हैं। वो आजकल उसी ने मसाइल खड़े किए हुए हैं, वो इतना अंदर से तंग करता है कि मुश्किलात में आज का इंसान पड़ा हुआ है। ये जो वो इतना तंग इंसान को अंदर से करता है, उछल उछल के और दबाव डाल डाल के इंसान को मजबूर करता है, ना सोने देता है, ना सोचने देता है, ना पढ़ने देता है, और ज़िंदगी अजीब सी बन जाती है और मजबूर होता है, भाग दौड़ में लगा रहता है, ये क्यों इस कदर जज्बे और कुदरत और तवानाई के साथ इंसानी नफ्स के अंदर रख दिया गया? इसलिए कि इंसान इसका सही रास्ता इख्तियार करे, और इख्तियार करने के बाद इज़्दवाज करे। जब इज़्दवाज करेगा तो इज़्दवाज में तो उन्होंने हुसूल लज़्ज़त किया, उसके नतीजे में औलाद अल्लाह ताला ने अता की। ये जब औलाद अता की तो अब वो दूसरी आयत जोड़ें जिसमें अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है कि वजअलना बैनहुम या बैनकुम, कि हमने तुम बैनकुम, वजअलना बैनकुम, नहीं नहीं वो एक और के जो आयत है कि जिसमें कि अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है कि कबाइल और शुऊब में तुम्हें तकसीम अल्लाह ताला ने कर दिया। हाँ, वजअलनकुम शुऊबन व कबाइला, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, ये इस आयत के साथ ज़म करें। पहले एक कवी उनसर इंसानी वजूद में रखा और उस उनसर की वजह से दोनों एक दूसरे की क़ुर्बत इख्तियार की, आगाहाना तौर पे सही रास्ते और दुरुस्त रास्ते के ज़रिए से, शरी रास्ते के ज़रिए से मिलाप हुआ। अब जब मिलाप हुआ तो बच्चे आए, जब बच्चे आए तो फिर क्या है, शुऊबन व कबाइला, शुऊब और कबाइल फिर आए। ये शुऊब और कबाइल जो हैं ये माशरे के इब्तदाई बन जाते हैं हमारे। मतलब अगर कोई माशरे को सही करना चाहे वो लामहाला ख़ानदानों पे काम करेगा, ख़ानदान के ऊपर काम करेंगे तो माशरे की इस्लाह होगी, वाइल्ला इस्लाह नहीं होगी। जो अपने करीबी तरीन के ऊपर काम करके इस्लाह नहीं कर सकता, वह दूर वाले पर कैसे करेगा? लिहाजा इंसान इन्हीं ख़ानदानों के ऊपर काम करे, कबाइल के ऊपर काम करे, इन्हीं कबाइल और शुऊब से बनते हैं। ये हमारे पास पहला आमिल समझ आया। दूसरा आमिल, दूसरा सबब जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, हम अपने हमनो इंसान को देखते हैं तो उससे मानूसियत अपने अंदर जन्म लेते हुए पाते हैं या उससे दूरी जन्म लेते हुए पाते हैं। मिसाल के तौर पर आप अकेले किसी बियाबान में चले जाएँ और सहरा में या गुम जाएं, वहाँ पे अचानक कोई आपको अपना हम नौ इंसान नज़र आ जाए, उसे देख के मानूसियत का एहसास होगा या घबराहट का एहसास? मानूसियत इंसान पाता है ना। ये जो मानूसियत है ये कहाँ से जन्म ले रही है? ये यहाँ तक कि हमारे पास आसपास दरख्त भी हैं, पत्थर भी हैं। चलें अभी सहरा वाली मिसालें नहीं देते, कोई कहे मुझे लूटने ही आ गया, डर जाए। आप इस मिसाल को ले लें, हमारे पास दरो दीवार भी हैं, हशरात भी हैं, चरिंद परिंद भी हैं, और इसी तरह जिन्नात पाकिस्तान में खुसूसन ज़्यादा होते हैं, उन्हें भी ले लें। ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में मानुसियत हमें किससे महसूस होती है? इंसान से मानुसियत महसूस होती है नहीं? ये जो इंसान से मानुसियत महसूस हो रही है, इस मानुसियत का मंबा क्या है? कहाँ से ये मानुसियत फूट रही है? इंसानी नफ्स है या बाहर है कोई आमिल? इंसानी नफ्स है। और इस बुनियाद पे एक दूसरे के करीब जाते हैं या नहीं? हत्ता कि ये अनसर अल्लाह ताला ने हैवानों में भी रखा है, और इस अनसर की वजह से हैवानों में भी एक मुआशरा जन्म लेता है। हैवानों के अंदर भी एक पूरा का पूरा ख़ानदान आबाद होता है। हाथी जो है वो अपने उस जो पूरा का पूरा एक उनका मजमूआ होता है उसमें किसी और जानवर को घुसने देते हैं, इसी तरह दीगर भी दूसरे जानवर को जन्म नहीं देंगे। और हत्ता कि अगर एक जानवर है मतलब भैंस का है, भैंस का बच्चा मर जाए, वो बच्चे की शक्ल का एक गौशाला उधर बना देते हैं, बछड़ा बना देते हैं, भैंस उसे देख के मानुसियत का इजहार करती है या नहीं? ये तो जो दूध धोने का मसला आता है उसमें ये मसला पेश आता है कि उसका अगर बछड़ा मर जाए, बच्चा मर जाए, भैंस दूध नहीं देती, तो उसके दूध को जारी रखने के लिए वो फिर एक उसका मुशाबे बना देते हैं। ये मानुसियत कहाँ से जन्म ले रही है? इस मंबे मानुसियत को देखें। ये मानुसियत इंसान को इस बात पे उभारती है कि एक दूसरे के करीब हो, ये मानुसियत उभारती है कि एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करो, ये मानुसियत इंसान को उभारती है कि बाहमी तौर पर तुम इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करो। यानी तब ये नहीं है कि एक दूसरे की हमें एहतियाज है फ़कत, वो एहतियाज बैरूनी अवामिल हैं, हमारे अंदर अंदरूनी अवामिल हैं कि हम बाहमी तौर पर इज्तमाई ज़िंदगी बसर करें। ये अंदरूनी अवामिल हमारे पास मौजूद हैं। बस आपने इधर देखा, नहीं आप अभी वो बात के मराहिल है ना, हम तो आगाज़ देखना चाह रहे हैं ना इंसानियत का। अभी तो माशरे के जो मसाइल हैं वो उसे बाद में देखेंगे। आप बिल्कुल आगाज़ में कदम रखें, आगाज़ में एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है तो मानुसियत जन्म लेती है या नहीं? वो उसके करीब जाता है या नहीं? वो उससे ताल्लुक़ कायम करना चाहेगा यानी ये क्यों सारे उमूर अंजाम दे रहा है? वो अपने अंदर देखेगा, क्योंकि वो एक इंसान दूसरे इंसान से मानुसियत रखता है। ये मानुसियत का होना हम सब अपने वजूद के अंदर दर कर सकते हैं। वो जो आप बकिया चीज़ें बता रहे हैं उसके अवामिल दूसरे हैं, वो बैरूनी भी हो सकते हैं, अंदरूनी भी हो सकते हैं, सही है। लेकिन माश इज्तमाही ज़िंदगी क्यों जन्म लेती है, मतलब माशरे टूटते क्यों हैं? हाँ ये वाली बहस आ सकती है जो आप कर रहे हैं, क्यों माशरे टूट जाते हैं? अभी तो हम ये बहस कर रहे हैं कि माशरे बनते क्यों हैं। माशरे बनने का एक गहरा आमिल क्या है? एक दूसरे से मानूसियत, और उसकी बुनियाद पर एक दूसरे के करीब आना, और करीब आके एक दूसरे से इस्तफादा करना मुख्तलिफ उमूर में, ये सबब बनता है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम इसे बाद में देखेंगे। मदनी तब के ज़ैल में ये दो आमिल आप इसे ज़हन नशीन करें। ये कुरान करीम की आयात से इस्तदलाल है जो मदनी तब के नज़रिए के ऊपर किया जाता है। वो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि ताहिरीन।